ये 58 नंबर का श्लोक है। त्रयमेव भवेत मिथ्या गुणत्रय विनिर्मितम् अस्य दृष्टा गुणातीतो नित्यो हि एकश्चिदात्मकः। देखिए, कल्पना झूठी हो, कल्पना झूठी होती ही है, लेकिन कल्पना के लिए कोई आधार चाहिए। बिना आधार के कल्पना नहीं होती है। लेकिन जो व्यवहार चलता है वो कल्पना से चलता है। उदाहरण के लिए, कोई देवदत्त नाम का आदमी है, अस्थि भाति प्रिय के ऊपर नाम रूप की कल्पना होती है, उसका नाम देवदत्त रखा। करोड़ों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? देवदत्त के नाम। ये देवदत्त है कौन? कौन है वो? अरे आप बोलते हो मैं हूं, तुम थोड़े, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम प्रकाश की जगह राम रख दिया तो क्या होता? आप थोड़ी विचार करके देखो। अरे जो कल्पना है वो कल्पना सत्य को इतना ढक देती है कि नाम के लिए आदमी मारने मरने के लिए तैयार हो जाता है। और नाम क्या है? कोई हिंदू है तो पंडित से पूछ लिया, उसने कहा ये आ रहा है, इस पे आ रहा है, वो रख दिया, उसने कहा वो रख दिया। अब उस कल्पना पे सारा व्यवहार चलता है। कल्पना करना कभी मरती है? क्योंकि कल्पना होती ही नहीं है। अरे देवदत्त कभी पैदा हुआ ही नहीं, जो पैदा हुआ वो तो शरीर है। वो मर गया तो तुमने बोला देवदत्त मर गया। लेकिन सारा संसार जो है वो कल्पना पे चल रहा है। लेकिन कल्पना के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, ये बात पक्की हो गई। आधार के बिना कल्पना संभव नहीं है। त्रयमेव भवेत मिथ्या गुणत्रय विनिर्मितम्। जैसे कृष्ण ने कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं। ऐसे आप लोग तो सब सुने हुए हैं, थोड़ी बहुत पता होगा आपको। गुणा गुणेषु वर्तन्ते का क्या अर्थ है मालूम है? ग्रीस क्या अर्थ है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? नहीं, फिर आपने शंकराचार्य को नहीं पढ़ा। क्या अर्थ है सरस्वती बहन? क्या है? आज भी गए काम से, देखो वहां पढ़ना, थोड़ा भाष्य पढ़ना, आज घर में जाकर के देखना है। गुण मैंने इंद्रियां और गुण मैंने विषय। ये जो पांच इंद्रियां हैं ये पांच भूतों के गुणों से बनी हुई हैं, इसलिए इनको गुणा कहते हैं। गुणों से बनी है इसलिए इनका नाम भी गुण है। जैसे आपको बताया आंख है, ये तेज के सत्वगुण से बनी हुई है। और तेज का जो गुण है वो क्या है? रूप। तेज का गुण क्या है? रूप। और तेज से क्या बनी? आंख। तो गुणा गुणेशु इंद्रियाणी विषयेषु, भाष्यकार अर्थ करते हैं इंद्रिया। मैंने आप ये समझ लो, ये जीव परमात्मा को देख के खुश क्यों होता है? समझना राज की बात। जैसे आंख रूप को देख के खुश होती है, क्योंकि आंख और रूप कहीं न कहीं बहुत गहराई में दोनों एक ही हैं। कान और शब्द बहुत गहराई में दोनों एक ही हैं। ऐसा ये जो है ना, ये ऐसी बात नहीं है, ये लॉजिकल बात है, ये साइंस के द्वारा प्रूफ ये बात है कि कान और शब्द बहुत गहराई में एक हैं, क्योंकि दोनों का मूल क्या है? आकाश। किसका? कान का और शब्द का। तो कहीं अपने को ही पाकर के व्यक्ति खुश होता है। आप जा रहे हैं कहीं, आपका लड़का सामने से आता है, आपको खुशी होती है। आपको लड़की से खुशी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें आप अपने को देख रहे हैं, इसलिए आपको खुशी होती है। गीता में क्या लिखा है? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। ये प्रसन्न क्यों होता है? कि कहीं ना कहीं ये और वो दोनों एक हैं। कोई संबंध होता है। एक बहुत पुराना एक महात्मा था, वो कहता था, पुस्तक भी अपने दिल के राज हर किसी के सामने नहीं खुलती। पुस्तक भी ये जानती है कि मेरे पन्ने कौन पलट रहा है। हर किसी के सामने कोई अपना दिल नहीं खोलता। कठोपनिषद में यमराज लिखता है, यम ये सब वृणुते तनुम स्वाम। जिसको वह परमात्मा स्वीकार करता है, उसके सामने अपना सारा स्वरूप खोल देता है। आप अपने सामने, आप अपने को किसके सामने खोलते हो? जिसको आप पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, ये भावनाओं के वशीभूत होकर के हो या विवेक से हो, संसार में हम भावना के वशीभूत होकर के किसी के सामने अपने को खोल देते हैं, लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है। जब पूर्ण विवेक होता है, उस समय परमात्मा इसको स्वीकार करता है, और जब परमात्मा इसको स्वीकार करता है, तो यमराज कहते हैं उस समय परमात्मा इसके सामने अपना दिल खोल देता है। व्यवहारिक बात भी है, जिसको आप दिल से स्वीकार करते हैं, उससे आप कुछ नहीं छुपाते, और यदि आप कुछ छुपाते हैं, इसका मतलब आपने कहीं उसको दिल से स्वीकार नहीं किया। दो बातें हो सकती हैं, या तो दिल से स्वीकार नहीं किया, या तो आपको कहीं न कहीं अंदर यह एहसास है कि मैं गलत हूं। तीसरी कोई कारण नहीं है। तो वो परमात्मा जब व्यक्ति को स्वीकार करता है, उसको समझाने की एक प्रक्रिया ये बता रहे हैं। देखो, वो चिरात्मक है वो परमात्मा, और उसके पहले की जो स्थितियां हैं, क्योंकि ये जो अभी आप श्रवण कर रहे हैं अपरोक्ष अनुभूति, ये सृष्टि से लेकर के सृष्टा तक पहुंचने की एक महत्वपूर्ण यात्रा है, और इस यात्रा की एक खासियत ये है ये सृष्टि ही सृष्टा के रूप में परिणित हो गई। ये जो श्लोक के अंदर बताया, जो अभी ये जो महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहे हैं कि सृष्टि सृष्टा के रूप में ही सृष्टि आ गई। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है फिर, यदि वो सृष्टा ही सृष्टि के रूप में है, हम इसकी उपासना करते हैं तो परमात्मा की उपासना हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रश्न ये बोलते नहीं है। सृष्टि का जब हम उपभोग करते हैं तो उसके प्रति हमारी भोक्ता वाली बुद्धि होती है, उपास्य वाली बुद्धि नहीं होती है। उस समय हमारे चित्त में कहीं सृष्टा की विस्मृति हो जाती है और सृष्टा की विस्मृति होते ही जीवन में लोभ और भय आ जाते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा आपको समझाऊं, यदि आपको रस्सी में सांप दिखे, क्योंकि रस्सी ही सांप रूप से प्रणीत हुई है और तो कुछ हुआ नहीं, तब आपके जीवन में भय पैदा हो जाता है। कृष्ण ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान ने रस्सी को ढक दिया। अज्ञान की दो शक्तियां हैं आपको मालूम है, आवरण और विक्षेप। आवरण ने अधिष्ठान को ढक दिया और विक्षेप ने वहां सांप दिखा दिया। तो रस्सी से ही आपको भय लगने लग गया। सीपी पड़ी हुई थी, वहां चांदी दिखने लग गई तो उसने आपके अंदर लोभ पैदा कर दिया। वो सृष्टा जब सृष्टि के रूप में प्रणीत हो गया और सृष्टा की विस्मृति हो करके केवल आप उसको सृष्टि के रूप में देखते हैं तो आपके अंदर कभी लोभ पैदा होता है और कभी भय पैदा होता है। लेकिन जिस समय आपके अंदर लोभ और भय पैदा हो रहा है उस समय भी वो रस्सी है। यहां इस श्लोक के अंदर खाली यही बता रहे हूं, उसके स्वरूप में तीनों काल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। देखो, हमने कभी आपको बताया, अर्जुन ने एक दृष्टांत दिया गीता में। उसने कहा कृष्ण कि हमने आपको बहुत कुछ कहा, लेकिन उसने एक बात स्वीकार करी, अजानता वापि महिमानम तवेदम, क्योंकि मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था, तुम्हारी गरिमा नहीं जानता था। तुम्हारी गरिमा को मैंने तुम्हारी आंखों से देखा और जब मैंने तुम्हारी गरिमा को, तुम्हारे स्वरूप को तुम्हारी आंखों से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूं। इसलिए वहां जो शब्द का प्रयोग किया है, सखेति मत्वा, सखा मानकर मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो सखा को कहते हैं, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जानता था। जब मुझे तुम्हारी कृपा से तुम्हारी आंखें मिली तो मुझे पता लगा कि मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा के स्वरूप को कभी कभी भक्ति के माध्यम से व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन अपने स्वरूप को समझने के लिए तो केवल शास्त्र की ही जरूरत है। यदि वो परमात्मा के स्वरूप को समझे और अपने स्वरूप को भी समझे, तब तो लगेगा कि हम दोस्ती के काबिल हैं। बात कुछ खोपड़ी में घुसती है कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि वास्तविक जीव और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। उसने कृष्ण की दृष्टि से कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को देखा, लेकिन अपना यथार्थ स्वरूप वो भूल गया। गहरी दोस्ती तो तभी होगी जब वो कृष्ण के स्वरूप को भी देखे और अपने स्वरूप को भी देखे। ये दृष्टि तो हनुमान जी महाराज के पास थी। हनुमान ने कहा, हे राम, जीव की दृष्टि से विचार करते हैं तो मैं तुम्हारा अंश हूं, देह की दृष्टि से विचार करते हैं तो मैं तुम्हारा दास हूं, और तत्व की दृष्टि से यदि विचार करते हैं तो जो आप हैं। तो अर्जुन कृष्ण का यथार्थ स्वरूप तो देख पा रहा है, लेकिन अपना स्वरूप भूल जा रहा है। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए हमारे यहां लिखते हैं, शास्त्रम लोचनम प्रोक्तम। लोचन बोलते हैं आंख के लिए, आंख के लिए। अपने स्वरूप को जानने के लिए एकमात्र शास्त्र की आवश्यकता है। उस शास्त्र को यदि आप सम्यक रूप से अध्ययन करेंगे तब आपको अपने स्वरूप का बोध होगा। सर्वम खलु इदम् ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, ये शास्त्र के सिवाय कोई आपको बता नहीं सकता। चलो, त्रयमेव भवेत मिथ्या, तीनों, क्योंकि यहां पर एक दृष्टांत है। मैं आप कभी दिया तो होगा मैंने आपको, ऐसा हो नहीं सकता नहीं दिया हो, क्योंकि यहां बता रहे हैं अस्य दृष्टा गुणातीतो नित्यो ही एकश्चिदात्मका। वास्तविक एक ही है, दृष्टांत दिया है मैंने नहीं दिया है, ये आदि शंकराचार्य ने ये दृष्टांत दिया है, और जहां की ये श्रुति उठाई है उन्होंने वही दृष्टांत दिया। ये कहां की श्रुति है, कहां से उठाया मालूम है, कहां का उठाया हुआ है ये वाला? मैंने ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहां का उठाया हुआ है? मांडुक्य का उठाया, वहां दृष्टांत दिया है कि एक जादूगर ने जादू दिखाया और उसने एक रस्सी फेंकी आकाश में। रस्सी में सुना, याद होगा आपको, है याद है ना, लेकिन इसका मीनिंग याद नहीं होगा। रस्सी फेंकी, फिर उस रस्सी में वो मायावी चढ़ गया, और कैसा चढ़ा? सायुधम, हथियार के सहित चढ़ा। फिर दूसरा माया भी चढ़ा दूसरी रस्सी में, फिर तीसरा माया भी चढ़ा तीसरी रस्सी में, फिर ऊपर लड़ाई जैसी हुई, एक दूसरे को मारा, हाथ पांव सब नीचे गिरे। अब यहां पर जो समझने की बात है, ये रस्सी क्या चीज है मालूम है आपको? कौन है बोलो? रस्सी जो है ये अवस्थाएं हैं। कौन सी? यहां बता रहे हैं जो तीन अवस्था बता रहे हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, यहां जो राज की बात बता रहा हूं वही समझनी आपको है। अब उस रस्सी पे जो पहली रस्सी पर जो चढ़ता है वो जागृत का अभिमानी चढ़ता है, उसका नाम है विश्व। विश्व विश्व दूसरी जो रस्सी है स्वप्न, उस पे चढ़ता है तेजस, और सुसुप्ति की जो रस्सी है उस पे चढ़ता है प्राज्ञ। अब जो राज की बात समझ लो क्या है, ये तीनों एक जैसे हैं। भाष्यकार का शब्द पढ़ना, घर में जाकर के देखना, आपको बताऊं बात, भाष्य देखने से आदमी की आयु बढ़ती है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं शंकराचार्य की आयु 16 वर्ष थी, 32 वर्ष हो गई। आचार्य वहां पर क्या हुआ, भाष्यकार का जो शब्द है वहां, मायावी इव मायावी, वो जादूगर जो रस्सी पर चढ़ रहा है, असली भाष्यकार ने आगे उत्तर दिया है वहां पे, परमार्थ मायावी भूमिष्ठो, वास्तविक जो सच्चा मायावी है वो तो जमीन पे लेटा हुआ, वो तो चढ़ा ही नहीं। लेकिन जो चढ़ रहा है वो उसके जैसे ही है। तो विश्व भी वही है, तेजस भी वही है, और प्राज्ञ भी वही है। अरे ये ऊपर लड़ाई क्या हो रही है, तो एक अवस्था दूसरी अवस्था को मार रही है, जागृत अवस्था स्वप्न को मार देती है, जागृत को स्वप्न मार देता है, स्वप्न को सुसुप्ति मार देती है, और वो जो परमार्थ वास्तविक जो माया उसी का नाम है तुरीय। वो तुरीय तत्व ही विश्व तेजस और प्राज्ञ के रूप में, लेकिन वो किसी भी रूप में दिखाई दे उसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन। आप कभी कभी, मैं तो अपने ऊपर देखता हूं, आप भी अपने ऊपर देखिए कभी, अरे आप बोलते हो कभी, अरे मैं कभी तो चार माले तक ऐसी धड़ाधड़ चढ़ करके चला जाता था, अब जो है एक माला चढ़ना जो है सांस फूलती है, ये मैं कैसे हो गया भाई, वो किस दृष्टि से वो बोल रहा है, शरीर की दृष्टि, शरीर तो नहीं बोलता, शरीर तो बेचारा रहा ही नहीं, हो वो आत्मा की दृष्टि से बोलता है, मैं तो वही हूं। मैं एक आदमी की सच्ची बात बता रहा हूं, नाम बताना ठीक नहीं है, एक आदमी बहुत अच्छा आदमी, हमारे बहुत परिचय के थे और बड़े डॉक्टर थे, वो बुढ़ापे में बहुत पहले गुजरात से आए, बहुत पहले, बड़ी डिस्पेंसरी है, दोनों लड़के डॉक्टर हैं उनके, बड़ा लड़का तो पहले ही अलग हो गया, छोटे लड़के की भी एक दिन अपने बाप से झगड़ा हो गया है ना, तो उसने कहा मेरे को अलग रहना है अभी। वो श्याम को मैं एक जगह कथा करते थे, वहां आया करते थे, मेरे को बोला ऐसा ऐसा हो गया, हमने कहा डॉक्टर साहब आप तो इतना वेदांत सुनते हो, अलग हो गया तो भी तो आपका ही है, और साथ में रहे तो भी आपका ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग हो गया तो होने दो, इसमें क्या बात है। बोले महाराज ये बात नहीं है, कुछ शेयर होता है ना, शेयर मार्केट का शेयर कुछ होता है, वो जब आए होंगे तब उन्होंने किसी कंपनी का खरीदा था, अब वो ट्रांसफर करने के लिए दिया तो उनका जो साइन होता है ना वो रिजेक्ट होके आ गया, बोला ये तुम्हारा साइन नहीं है। तो आए तो ऐसे थोड़ा बैठे, मैंने कहा जरा इनका मूड थोड़ा सा जरा ठीक ठाक हो जाए तो अच्छी बात। हमने कहा हो सकता है डॉक्टर साहब तुम्हारे नहीं हो ये साइन। अरे बोले आप ऐसा कैसे बोलते हैं मेरे नहीं है, मैंने तो उस समय जो है दो दो पैसा बचा के खरीदा। अभी हमने कहा सब बदल गया ऊपर से नीचे तक, तो भी अंदर से तुम बोल रहे हो कि मैं, यही तो कृष्ण ने कहा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। उस समय सारे बाल काले थे जब खरीदा, अब सारे बाल सफेद हो गए। उस समय मुंह में 32 के 32 असली दांत थे, अब 32 के 32 नकली हैं। इतना परिवर्तन होने पर भी तुम बोलते हो कि मैं तो वही हूं। कृष्ण ने कौन सी गजब की बात कर दी कि उसने ये कह दिया तथा देहांतर प्राप्ति। जब बचपन से लेकर के और आज आपकी उम्र 78 बरस की है, तुम नहीं बदले, सब कुछ बदलने पर भी, तो दूसरे शरीर में जाने से तुम कैसे बदल जाओगे। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यति। धीरता तो यही है कि दूसरे शरीर में हमें रहना है, ये आत्मा मरती नहीं है। और यहां जो करेंगे उसके आधार पे वहां का घर मिलेगा। ये समझ लो बात। इसलिए ये कहते हैं अस्य दृष्टा गुणातीतो नित्यो ही एकश्चिदात्मका। जो दृष्टा है वो एक है, दृश्य बदलते चले जाते हैं और कहीं हम दृश्य के साथ में इतने उलझ जाते हैं कि दृष्टा कोई लोग, वो तो तुम लोग अच्छे हो प्रेमपुरी में आते हो तो अपने मां बाप को याद कर लेते हो, नहीं तो आजकल तो लोग मरा नहीं कि उसकी फोटो वोटो निकाल करके फेंक देते हैं, हैं? हाँ लोग तो बोलते हैं, सही सच्ची बात है ना, लड़का कोई नाम चलाने वाला थोड़ा ही होता है, तो नाम कटाने वाला होता है, मरोगे तो उसी दिन नगर पालिका में जाएगा, बोले भाई मेरे बाप का नाम काट, क्योंकि परंपरा ही ऐसी चली आ रही है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दादा का नाम कटवाया था। ये व्यवहार ही ऐसा है, ये उल्टा ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी समझ आना बड़ा कठिन काम है। इसलिए बोलते हैं अस्य दृष्टा गुणातीत। तो जो दृष्टा है वो गुणातीत है, गुणों से रहित है, और जो दृश्य है वो गुणों से युक्त है। इसलिए कृष्ण ने कहा, आपको एक बात बताता हूं मैं, आप लोग यहां 50 भागवत सुने हुए लोग हैं, सुखदेव की उत्पत्ति कैसी हुई किसी को पता है? झूठ बात है वो, कहीं कहीं कबूतर वाला कहीं आता नहीं है, कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है। सुखदेव की उत्पत्ति का एक ही जगह उल्लेख है, वो मैं आपको बता देता हूं। सुखदेव की उत्पत्ति का प्रसंग केवल देवी भागवत के अंदर है, बस वो अयोनिज है वो, और उसकी कैसी उत्पत्ति होगी सुन लोगे तो थोड़ा भी आपको भी घृणा हो जाएगी। विलक्षण उत्पत्ति है। तो जो सुखदेव जी महाराज हैं, जब आप सुन, तो व्यास के मन में एक ख्याल आता है, इसको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वो उनको जनक के पास में भेजते हैं। मैंने शायद कभी आपको बताया था, जब वो जनक के पास में जाते हैं तो जनक व्यवहार में घिरे हुए हैं, और इस बात का निराकरण भगवान शंकराचार्य ने किया। मैं आपको बताता रहता हूं कभी कि आचार्य ने लिखा, वो कितना ही व्यवहार में उलझा हो लेकिन रसिक जो था वो अध्यात्म का था। कर्ता व्यवहार था लेकिन रस उसको किस में था? जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, सब काम करते हैं, और आपके घर में कोई बहुत जरूरी काम चल रहा है, और आपकी धर्मपत्नी कहती है इतने बजे मैं फोन, जब काम होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। आप सारा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन आपका जो है ध्यान उस फोन के ऊपर ही बार बार जा रहा है, जबकि आपको मालूम है घंटी बजेगी तो मेरे तक आएगी, तो आपको बार बार बोर्ड के पास में जाके देखते हैं फोन आया तो नहीं। अरे रोज आपको पता है कि घंटी की आवाज वहां तक आती है, फिर भी आप वहां तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जिस चीज में व्यक्ति को रस होता है वो व्यवहार में कहीं भी उलझा हो, लेकिन जिस चीज में रस होता है वहां पर व्यक्ति की वृत्तियां स्वाभाविक रूप से चली जाती हैं। हम लोगों की विषयों के प्रति जो वृत्तियां जाती हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि हम सहज रूप से स्वाभाविक रूप से इंद्रियों में जीते हैं। और जो व्यक्ति इंद्रियों में जीता हो उसका विषय के प्रति चित्त खींचने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से खींच जाता है। आदमी की चाहत क्या है वो बड़ी बात होती है ना। एक आदमी कोई बीमार पड़ा, उसके शरीर पे फोड़े फुंसी हो गए, तो वैद्य वैद को बुलाया बड़ा। एक वैद्य ने कहा तुम जो है इसको सुबह सुबह इतना नीम के पत्ते खिलाया करो। बड़ा कहरा रहा था, सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। एक ने कहा इसको तुम चिरैता पिलाया करो। वो सुने ही नहीं किसी की बात, इतने में एक आदमी आ गया उसका दोस्त, उसने कहा इसको थोड़ा घी, और हरियाणा में बूरा बोलते हैं उसको, बूरा समझते हैं शक्कर, बोले इसको थोड़ा घी और बूरा खिलाओ। तो अपनी मां को बोलता है अरे इसकी तो कोई सुनता ही नहीं है, ये सब फालतू की लोगों की सुन रहा है, ये बोल रहा है ये खाओ वो खाओ, अब उसकी तो सुनो कहीं वो क्या बोल रहा है देखो। हाँ तो देखो, आदमी अपनी वासनाओं के हिसाब से सुन लेता है, अपनी कामनाओं के हिसाब से सुन लेता है। यदि वासना और कामना न हो तो फिर वो विषयों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं अस्य दृष्टा गुणातीत, तो इसको जो देखने वाला है वो गुणातीत है। और सबसे बड़ी बात बोलते हैं नित्य है एक है। मैंने जिस समय विश्व है उस समय भी तुरीय है, जिस समय तेजस है उस समय भी तुरीय है, और जिस समय प्राज्ञ है उस समय भी तुरीय है। अरे भाई आप सबसे बड़ी चीज है आपके होने की शर्त है, आप पे सारे व्यवहार अध्यारोपित हैं, आपके स्वरूप। यदि आपको आपका पोता दादा कहता है, आपका पुत्र आपको पिता कहता है, कोई आपको नाना कहता है, लेकिन आपके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, उसका नाम है एक। व्यवहार सबके अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से वो जो गुणातीत है वो चिदात्मक है, वो तीनों अवस्थाओं में एक ही है। अच्छा, अब दृष्टांत थोड़ा दे रहे हैं, देखिए थोड़ा। हाँ, यद्वदमृति घटभ्रांति सुक्तौ रजत स्थितिम तद्वद ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्षमाणे न पश्यति। वीक्षमाणे न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। वीक्षमाणे का अर्थ होता है देखते हुए भी, न पश्यति नहीं देखता है। इसी को बोला शंकराचार्य ने मूढ़, पश्यन अपि न पश्यति मूढ़। क्या बोलते हैं? यदवत मृदि घट भ्रांति, जिस समय वो घट को देख रहा है उस समय भी वह मिट्टी को ही देख रहा है, नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? जब घट को देख रहा है तो मिट्टी को देख रहा है। अब उसको बोला तू मिट्टी देख रहा है क्या? नहीं, बोला नहीं, मिट्टी कहां देख रहा हूं, मैं तो घड़ा देख रहा हूं। इसी प्रकार से और जब वो सुक्ति को देख रहा है तब रजत देख रहा है, रजत को देख रहा है उस समय सुक्ति को ही देख रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब सुक्ति दिखेगी तो रजत का बाद हो जाए। उदाहरण, महात्मा लोग इसमें एक बहुत पुराना दृष्टांत दे देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? आप लोगों को याद होगा जो सुनते हैं पुराने समय से, राधे और कौंते का दृष्टांत देते हैं। यहां पे एक ही दृष्टांत अभी तक दिया जाता है, राधे और कौंते। कौन था राधे? और कौन था कौंते? केवल विस्मृति है बस। राधे को कौंते बनने में कोई क्या टाइम लगता है? जो है सो है। लेकिन इस भ्रांति को मिटाए कैसे हो? इसी प्रकार से इस जीव में जो भयंकर भ्रांति हो गई है, फिर उसमें ये कहता है कि पापो हम पाप कर्मा हम, और ऊपर से तुम्हारे को जो है ना ये पाप तो आदमी से हो। मैंने कभी आपको बताया, दृष्टांत दिया, देखो पहले वाले वाल्मीकि में और बाद वाले वाल्मीकि में क्या अंतर है? चित्त सुधि। देखो एक आप समझो, अग्नि जो है ना जलाती है, लेकिन लकड़ी के साथ में कभी मैंने अनुभव किया, नई मुंबई में जब आश्रम बना तो उसके बाद वो फायर वाले लगाते हैं ना, ऐसा ऐसा सब लगाते हैं। तो उसने बोला कभी यदि आग लग जाए तो, हमने कहा फिर तो कहते हैं उसकी जड़ पे मारना, जहां आग लगी है वो ऊपर लपटों पे नहीं मारना, ऐसा समझाता है वो आकर के। वो ये जो चेतना है यदि ये इंद्रियों के साथ में जुड़ जाती है तो पहले वाला वाल्मीकि बन जाता है। कितनी बड़ी बड़ी लपट हो, यदि उस लपट का संबंध नीचे लकड़ी से हट जाए ना, वो लपट कहां खो जाती है? कहां चली जाती है? बोलो, लगाओ तुम लॉजिक लगाओ अपना, कहां जाती होगी? बोलो 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 बोलो, हैं? हवा में विलीन हो जाती। देखो अग्नि का जो कारण है वो वायु है। हां, यदि आप कार्य के साथ में जुड़ते हैं तब आप दूसरे को दुख पहुंचाने वाले होते हैं। कृष्ण ने कहा जैन दर्शन में और इस दर्शन में यही अंतर है। कृष्ण कहते हैं जब तक आदमियों का इंद्रियों के साथ में तादात्म्य है तब तक आदमी चाहते हुए भी अहिंसक नहीं हो सकता। कृष्ण की फिलॉसफी बहुत अच्छी है, अहिंसा वाली फिलॉसफी भी बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक आदमी का इंद्रियों के ऊपर निग्रह नहीं होगा, क्या अहिंसा जीवन में संभव है? और यदि आपका इंद्रियों के ऊपर संयम हो गया तो आप चाहते हुए भी हिंसा नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का सारा जोर इंद्रियों के संयम के ऊपर है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आप केवल बोले कि हम अहिंसा साध लेंगे तो मुझे नहीं लगता अहिंसा साध्य है। और एक बार यदि आपने संयम को साध लिया तो मुझे नहीं लगता आप चाहें तो भी हिंसा कर सकते हैं। इसलिए वो जो पहले वाला वाल्मीकि था ना, उसकी जो चेतना थी वो इंद्रियों के साथ में जुड़ी थी। तो जब चेतना इंद्रियों के साथ में जुड़ेगी तो दूसरे को जलाने वाली होगी, क्योंकि पूर्व मीमांसा का एक वाक्य आता है, बहुत अच्छा वाक्य है, आप लोगों ने सुना होगा, नानुपमर्द्य भोग संपद्यते। संसार में कोई भी भोग दूसरे को कष्ट दिए बगैर नहीं हो सकता है। पुराने जमाने में, आप पुराने जमाने में, अभी आप लोग तो नए जमाने के हो, पुराने जमाने के हो, कभी आपने सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी खाई? अच्छा, उसका स्वाद और अभी जो इसमें पीसते हैं इसके स्वाद में कितना अंतर है? क्योंकि वो पीसने वाले की मेहनत है उसके अंदर, एक आध बूंद शायद पसीना का भी गिर जाता होगा। भोग बिना उपमर्दन के भोग होता नहीं है, कष्ट पहुंचाए बगैर, कष्ट झेले बगैर कोई भोग नहीं हो सकता। हम सोचें सुविधाओं में रहते हुए, सुविधा में यदि तुम जीवन यापन करते हो तो तुम भोगों के लायक भी नहीं बचते हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि दुनिया के भोग भोगने भी हैं तो तुम्हारा जीवन रफ और टफ होना चाहिए, ऐसा नहीं भोग भोग सकते आप। नानुपमर्द्य भोग संपद्यते, पूर्व मीमांसा कहती है भोग बिना कष्ट दिए बगैर दुनिया में कोई भोग होते नहीं है, वही भोग का आनंद लेते हैं। किसान 8 घंटे के काम करता है, उसको नींद भी बहुत मस्त आती है। हम लोग जिम में जाते हैं, थोड़ा पसीना बहाते हैं, कहने का तात्पर्य वही है कि पसीना बहाओ, तात्पर्य टोटल वही हो, और कुछ तो तात्पर्य नहीं है। चलो अच्छा, यदवत मृदी घट भ्रांति, जैसे मिट्टी में घट की भ्रांति है, सुक्ति में चांदी की भ्रांति है, उसी प्रकार से तदवत ब्रह्मणि जीवत्वम, उसी प्रकार से ब्रह्म में जीव की भ्रांति है, कोई और नहीं वही है। और जब विस्मृति हो जाती है ना महाराज, विस्मृति बड़ा दुख देती है। कुछ चीज आप भूल जाओ ना, एक बारी मेरे को एक आदमी बता रहा था कि उसकी जेब में कुछ पैसा था तो पिछली वाली जेब में उसने रखा हुआ था, कहीं फंस गया। अब उसने कहा पैसा है नहीं, अब घर कैसे जाऊं? अब वो 3-4 किलोमीटर दूर था कांदीवली स्टेशन से, और कहीं जाना था उसको आगे, पैदल चलने लगा। थोड़ा अच्छा ईमानदार आदमी था, चलते चलते पसीना पसीना हो गया शाम को 6 बजे के बाद। बम्बई में तो ऐसे ही पसीना आता है। अब कहते हैं जब वहां पहुंचा घर के पास तो मैंने जेब से रूमाल निकालने की कोशिश किया, उधर से 500-500 के 3-4 नोटे जो है, इतना अफसोस हुआ। फिर मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, कुछ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? फिर बोले महाराज पहले बड़ा दुख हुआ कि इतना पैदल आया, लेकिन रात को इतनी अच्छी नींद आई। हमने कहा देखो ये जो तदवद ब्रह्मणि जीवत्व भिक्षमाणे न पश्यति, ये वो होते हुए भी ये अपने स्वरूप को नहीं देख पाता, तो स्वरूप को देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, आप लोगों ने सुना होगा, पराभिध्यानात्तु तिरोहितम अस्य स्वरूप बंद विपर्ययौ। जब ये सृष्टा का ध्यान करता है, दृष्टा का ध्यान करता है, सृष्टा और दृष्टा का ध्यान करने पर ये सृष्टि और दृश्य से मुक्त होकर के उसके साथ में एकता का अनुभव करता है। पराभिध्यानात्तु तिरोहितम यस्य, जो वास्तविक स्वरूप इसका ढका हुआ है वो वास्तविक स्वरूप इसका प्रकट हो जाता है। तिरोहित मैंने ढका हुआ। और जब आपका कभी ढका हुआ स्वरूप आपका प्रकट हो जाता है तो बंद का विपर्य, तो बंद का विपर्य क्या हो गया? मोक्ष। उस समय मनुष्य को यह अनुभूति होती है कि वास्तविक में मैं तो मुक्त हूं। उसके लिए उसको उसका ध्यान करते हैं। इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य ने कहा वास्तविक में सत्य वस्तु के स्वरूप में कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी प्रकार से ये आत्मदेव हैं, इन आत्मदेव के स्वरूप में कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ये है शुद्ध वेदांत कि जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, और ये परिवर्तन जो दिखाई देता है ये एक कल्पना है। और यदि मनुष्य को सत्य तक पहुंचना है तो कहीं न कहीं इसको अपने जीवन को कल्पनाओं से मुक्त करना होगा। इस प्रकार से 59 श्लोक हो गए। 60वें श्लोक की व्याख्या कल से करेंगे।